हरे कृष्ण। आज हम भगवद गीता के 10वें अध्याय पाठ करेंगे। पहले भगवद गीता के महात्म्य, इस अध्याय के अध्याय का महात्म्य, भगवान शिव जी कहते हैं, पार्वती के कह रहे हैं, सुंदरी अब तुम दशम अध्याय की महात्म्य की परम पावन कथा सुनो, जो स्वर्ग रूपी दुर्ग में जाने के लिए सुंदर सोपान और प्रभाव की चरम सीमा है। काशीपुरी में धीर बुद्धि नाम से विख्यात एक ब्राह्मण था, जो मुझमें प्रिय नंदी के समान भक्ति रखता था। वो पावन कीर्ति के अर्जन में तत्पर रहने वाला, शांतचित और हिंसा कठोरता एवं दुस्साहस से दूर रहने वाला था। जितेंद्रिय होने के कारण वो निवृत्ति मार्ग में ही स्थिर रहता था। उसने वेद रूपी समुद्र का पार पा लिया था। वो संपूर्ण शास्त्रों के तात्पर्य का ज्ञाता था। उसका चित्त सदा मेरे ध्यान में संलग्न रहता था। वो मन को अंतरात्मा में लगाकर सदा आत्मतत्व का साक्षात्कार किया करता था। अतः जब वो चलने लगता, तब मैं प्रेमवश उसके पीछे दौड़ कर उसे हाथ का सहारा देता रहता था। ये देखो, मेरे पार्षद भृंगेरीठी ने पूछा, भगवान इस प्रकार भला किसने आपका दर्शन किया होगा? इस महात्मा ने कौन सा तप, होम अथवा जप किया है कि स्वयं आप ही पद पद पर इसे हाथ का सहारा देते चलते हैं? भृंगेरीठी का यह प्रश्न सुनकर मैंने इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के पार्श भाग में पुन्नाग वन के भीतर चंद्रमा की अमृतमय किरण से धूली हुई भूमि में एक बेदी का आश्रय लेकर मैं बैठा हुआ था। मेरे बैठने का क्षण भर बाद ही सहसा बड़े जोर की आधी उठी। वहां के वृक्षों को शाखाएं नीचे ऊपर होकर आपस में ठकरने लगी। कितनी ही हठानियां टूट टूट कर बिखर गई। पर्वत की अविचल छाया भी हिलने लगी। इसके बाद वहां महान भयंकर शब्द हुआ, जिससे पर्वत की कंदराएं प्रतिध्वनित हो उठी। तद अनंतर आकाश से कोई विशाल पक्षी उतरा, जिसकी कांति काले मेघ के समान थी। वो कज्जल की राशि, अंधकार के समूह अथवा पंख कटे हुए काले पर्वत सा जान पड़ता था। पैरों से पृथ्वी का सहारा लेकर उस पक्षी ने मुझे प्रणाम किया और एक सुंदर नवीन कमल मेरे चरण में रखकर स्पष्ट वाणी में स्तुति करनी आरंभ की। पक्षी बोला, देव आपकी जय हो। आप चिदानंदमय सुधा के सागर तथा जगत के पालक हैं। सदा सद्भावना से युक्त एवं अनासक्ति के लहरी से उल्लसित हैं। आपके वैभव का कहीं अंत नहीं है। आपकी जय हो। अद्वैत वासना से परिपूर्ण बुद्धि के द्वारा आप त्रिविध मलों से रहित हैं। आप जितेंद्रिय भक्तों के अधीन रहते हैं तथा ध्यान में आपके स्वरूप का साक्षात्कार होता है। आप अविद्यमय उपाधि से रहित, नित्य मुक्त, निराकार, निरामय, असीम, अहंकार शून्य, आवरण रहित और निर्गुण हैं। आपके चरण कमल शरणागत भक्तों की रक्षा करने में प्रवीण है। आपने भयंकर लालाट रूपी महासर्प की विष ज्वाला से अपने कामदेव को भस्म किया है। आपकी जय हो। आप प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से दूर होते हुए भी प्रमाण प्रामाण्य स्वरूप हैं। आपको बार बार नमस्कार है। चैतन्य के स्वामी तथा त्रिभुवन रूपधारी आपके प्रणाम है। मैं श्रेष्ठ योगियों द्वारा चुंबित आपके उन चरण कमल को चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो अपार भव पाप के समुद्र से पार उतारने में अद्भुत शक्तिशाली हैं। महादेव, साक्षात बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने की धृष्टता नहीं कर सकते। सहस्र मुख वाले नागराज शेष में भी इतनी चातुरी नहीं है कि वे आपके गुणों का वर्णन कर सके। फिर मेरे जैसे छोटी बुद्धि वाले पक्षी की तो बिसात ही क्या है। इस पक्षी के द्वारा किए हुए इस स्तोत्र को सुनकर मैंने उससे पूछा, विहंगम, तुम कौन हो और कहां से आए हो? तुम्हारी आकृति तो हंस जैसी है, मगर रंग कौवा का मिला है। तुम जिस प्रयोजन को लेकर यहां आए हो उसे बताओ। पक्षी बोला, देवेश, मुझे ब्रह्मा जी की हंस जानिए। धुर्जटे, जिस कर्म से मेरे शरीर में इस समय कालिमा आ गई है उसे सुनिए। प्रभु, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, अतः आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है, तथापि यदि आप पूछते हैं तो बतलाता हूं। सौराष्ट्र नगर के पास एक सुंदर सरोवर है जिसमें कमल लहलाते रहते हैं। उसी में से बाल चंद्रमा के टुकड़े जैसे श्वेत मृणालों के ग्रास लेकर मैं बड़ी तीव्र गति से आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते सहसा वहां से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब होश में आया और अपने गिरने का कोई कारण न देख सका तो मन ही मन सोचने लगा, अहो, ये मुझ पर क्या आ पड़ा, आज मेरे पतन कैसे हो गया। पके हुए कपूर के समान मेरे श्वेत शरीर में ये कालिमा कैसे आ गई। इस प्रकार विस्मित होकर मैं अभी विचार ही कर रहा था कि उस पोखरे के कमल में से मुझे ऐसी बानी सुनाई दी, हंस उठो, मैं तुम्हारे गिरने और काले होने का कारण बताती हूं। तब मैं उठकर सरोवर के बीच में गया और वहां पांच कमलों से युक्त एक सुंदर कमलिनी को देखा। उसको प्रणाम करके मैंने प्रदक्षिणा की और आपने पतन का सारा कारण पूछा। कमलिनी बोली, कल हंस, तुम आकाश मार्ग से मुझे लांग कर गए हो, उसी पातक के परिणाम वश तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा है, तथा उसी के कारण तुम्हारे शरीर में कालिमा दिखाई देती है। तुम्हें गिरा देख मेरे हृदय में दया भर आई और जब मैं इस मध्यम कमल के द्वारा बोलने लगी हूं उस समय मेरे मुख से निकली हुई सुगंध को सूंघकर 60,000 भौंरे स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए हैं। पक्षीराज, जिस कारण मुझ में इतना वैभव ऐसा प्रभाव आया है उसे बतलाती हूं, सुनो। इस जन्म से पहले तीसरे जन्म में मैं पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। उस समय मेरा नाम सरोज बदना था। मैं गुरुजनों के सेवा करती हुई सदा एकमात्र प्रतिव्रत के पालन में तत्पर रहती थी। एक दिन की बात है, मैं एक मैना को पढ़ रही थी। उससे पति सेवा में कुछ विलंब हो गया। इससे पति देवता कुपित हो गए और उन्होंने शाप दिया, पापिनी, तू मैना हो जा। मरने के बाद यद्यपि मैं मैना हुई तथापि पतिव्रत के प्रसाद से मुनियों के ही घर में मुझे आश्रय मिला। किसी मुनि कन्या ने मेरा पालन पोषण किया। मैं जिनके घर में थी वे ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल विभूति योग नामक प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय का पाठ करते थे और मैं उस पापहारी अध्याय को सुना करती थी। विहंगम काल आने पर मैं मैना का शरीर छोड़कर दशम अध्याय के महात्म से स्वर्गलोक में अप्सरा हुई। मेरा नाम पद्मावती हुआ और मैं पद्मा की प्यारी सखी हो गई। एक दिन मैं विमान से आकाश में विचर रही थी, उस समय सुंदर कमल से सुशोभित इस रमणीय सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी और इसमें उतरकर जो ही मैंने जल क्रीड़ा आरंभ की तो ही दुर्वासा मुनि आ धमके। उन्होंने वस्त्रहीन अवस्था में मुझे देख लिया। उनकी भय से मैंने स्वयं ही एक कमलिनी का रूप धारण कर लिया। मेरे दोनों पैर दो कमल हुए, दोनों हाथ भी दो कमल हो गए और शेष अंग के साथ मेरा मुख भी एक कमल हुआ। इस प्रकार मैं 5 कमलों से युक्त हुई। मुनिवर दुर्वासा ने मुझे देखा, उनके नेत्र क्रोधाग्नि से जल रहे थे। वे बोले, पापिनी, तू इसी रूप में 100 वर्षों तक पड़ी रहा। ये शाप देकर वे क्षण भर में अंतर्धान हो गए। कमलिनी होने पर भी विभूति योग अध्याय के महात्म से मेरी बाणी लुप्त नहीं हुई। मुझे लांघने मात्र के अपराध से तुम पृथ्वी पर गिरे हो। पक्षीराज, यहां खड़े हुए तुम्हारे सामने ही आज मेरी शाप की निवृत्ति हो रही है, क्योंकि आज 100 वर्ष पूरे हो गए मैं मेरे द्वारा गाए जाते हुए। इस अध्याय को तुम भी सुन लो, उसके श्रवण मात्र से तुम भी आज ही मुक्त हो जाओगे। ये कहकर पद्मिनी ने स्पष्ट एवं सुंदर वाणी में 10वें अध्याय का पाठ किया और वो मुक्त हो गई। उसे सुनने के बाद उसी के दिए हुए इस उत्तम कमल को लाकर मैंने आपको अर्पण किया है। इतनी कथा सुनकर उस पक्षी ने अपना शरीर त्याग दिया। ये एक अद्भुत सी घटना हुई। वही पक्षी अब 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है। जन्म से ही अभ्यास होने के कारण शैशव अवस्था से ही उसके मुख से सदा गीता के 10वें अध्याय का उच्चारण हुआ करता है। 10वें अध्याय के अर्थ चिंतन का ये परिणाम हुआ है कि ये सब भूतों में स्थित शंख चक्रधारी भगवान विष्णु का सदा ही दर्शन करता रहता है। इसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि जब कभी किसी देहधारी के शरीर पर पड़ जाती है, तब वो चाहे शराबी और ब्रह्म हत्यारा ही क्यों ना हो, मुक्त हो जाता है तथा पूर्व जन्म में अभ्यास किए हुए 10वें अध्याय के महात्म से इसको दुर्लभ तत्व ज्ञान प्राप्त हैं तथा इसने जीवन मुक्ति भी पा ली है। अतः जब ये रास्ता चलने लगता है तो मैं इसे हाथ का सहारा दिया रहता हूं। भृंगिरी थे, अब सब 10वें अध्याय की ही महामहिमा है। पार्वती, इस प्रकार मैंने भृंगिरी थे के सामने जो पापनाशक कथा कही थी वो यहां तुमसे भी कही है। नर हो या नारी अथवा कोई भी क्यों ना हो, इस 10वें अध्याय के श्रवण मात्र से उसे शव आश्रम के पालन का फल प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। 10वें अध्याय का जय श्री श्री राधा मदन मोहन की, जय श्री श्री कृष्ण बलराम की, जय श्री श्री गौर निताय की। श्रीमद् भगवद गीता के दशम अध्याय का हिंदी अनुवाद हम पाठ करेंगे। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो। क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और ना महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूं। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म तथा मृत्यु, भय तथा अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। महर्षिगण तथा उनसे भी पूर्व चार अन्य महर्षि एवं सारे मनु सब मेरे मन से उत्पन्न हैं, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त हैं, वो मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूं। प्रत्येक वस्तु मुझी से उद्भूत है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से ही पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। मेरे शुद्ध भक्त के विचार मुझ में बास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में बास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूं। अर्जुन ने कहा, आप परम भक्त परमेश्वर भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल, व्यास जैसे ऋषि आपके समय इस सत्यों की पुष्टि करते हैं, और आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कर रहे हैं। हे कृष्णा, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूं। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों की देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही आपने की अपने की अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों पे बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। हे कृष्णा, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूं उतना ही आपके शब्द अमृत को चाखना चाहता हूं। श्री भगवान ने कहा, हां, अब मैं तुमसे अपने मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूं। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूं। मैं आदित्य में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्र में चंद्रमा हूं। मैं वेदों में सामवेद हूं, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं तथा समस्त जीवों में जीवनी शक्ति हूं। मैं समस्त रुद्र में शिव हूं, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूं, वशु में अग्नि हूं और समस्त पर्वतों में मेरु हूं। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूं और समस्त जलाशयों में समुद्र हूं। मैं महर्षियों में भृगु हूं, वाणी में दिव्य ओंकार हूं, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन तथा समस्त अचलों में हिमालय हूं। मैं समस्त वृक्ष में अश्वत्थ वृक्ष हूं और देवर्षियों में नारद हूं। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूं और सिद्ध पुरुषों में कोपिल मुनि हूं। घोरों में मुझे उच्च श्रव जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूं और मनुष्य में राजा हूं। मैं हथियारों में वज्र हूं, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूं। अनेक फने वाले नागों में मैं अनंत हूं और जलचरों में वरुण देव हूं। मैं पितरों में अर्जमा हूं और नियमे के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज जम हूं। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रह्लाद हूं, दमन करने वाले में काल हूं, पशुओं में सिंह हूं तथा पक्षियों में गरुड़। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूं, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूं। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूं। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूं और तर्क शास्त्रों में मैं निर्णायक सत्य हूं। अक्षरों में मैं आकार हूं और समासों में दंड समास हूं। मैं शाश्वत काल भी हूं और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूं। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूं और मैं ही आगे होने वाले होने वालों के उत्पन्न करने वाला हूं। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, बाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा हूं। मैं सामवेदों के गीतों में बृहत साम हूं और छंद में गायत्री हूं। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष अगहन हूं तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली बसंत ऋतु हूं। मैं छलियों में जुआ हूं और तेजस्वियों में तेज हूं। मैं विजय हूं, साहस हूं और बलवानों का बल हूं। वृष्णिवंशियों में मैं वासुदेव और पांडव में अर्जुन हूं। समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारों में उशना हूं। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में मैं दंड हूं और जो विजय के आकांक्षी हैं उनके मैं उनकी मैं नीति हूं। रहस्यों में मैं मौन हूं और बुद्धिमानों में ज्ञान हूं। यही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूं। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियां का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा ये तो मेरे अनंत विभूतियां का संकेत मात्र है। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसके धारण करता हूं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। Those who did not understand Hindi, did they have any copy? Or those who don't understand Hindi, did they understand what I read just now? How many of you don't understand Hindi? Please raise your hand. So, what to do? Should I read in English also? Maybe. Let me see. Tomorrow maybe we'll read in English so that those who are... how many of you brought your books with you? Kon kon Bhagavad Gita saath mein nahi laya hai aaj? Achha. Theek hai. To kal agar aisa hum karte hain ki जो हिंदी भाषा भाषी हैं सब साथ में भगवद गीता लाएंगे और मैं पाठ अंग्रेजी में करूंगा, ठीक है? मतलब जो अनुवाद मैं अंग्रेजी में करूंगा। सो टुमारो आई विल रीड द ट्रांसलेशन इन इंग्लिश, रिसाइट द वर्स, फर्स्ट रीड गीता महात्म्य and we'll try to get the copies of Gita Mahatma printed. Can you get them printed tomorrow, Ganganare? 11th chapter? Mahatma? Huh? Yesterday, did you get them printed? ना गीता महात्मा भी प्रिंट करने को बोला था। डिड यू गेट द कॉपी ऑफ इंग्लिश गीता महात्मा? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दैट एंड हाउ मेनी डिडंट गेट दैट? सो ओके, हाउ मेनी कॉपीज डिड यू प्रिंट? 25 एंड यू ऑल गेव इट आउट? ओके, गिव इट आउट टू दोज हू डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी।